فجعلہم جزازاً الا کبیر اللہم، پس آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ جزاز کا جو لفظ ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں ہوتا۔ جیم زال زال اس کا روٹ ہے۔ جزن کہتے ہیں توڑنے کو، کاٹنے کو۔ اور ہوا کیا، اس قوم کا ایک رواج تھا، ایک تہوار کے موقع پہ پوری قوم جو تھی وہ شہر سے باہر کھلے میدان میں جاتی، دن بھر کھیلتے کودتے تفریح کرتے، شام کے وقت جب آتے تو وہاں کسی بت سے کوئی پرشاد لے کر آتے، اور واپسی میں وہ سیدھا گھر نہیں آتے تھے، وہ پرشاد انہوں نے اپنے شہر کے مندر میں رکھنا ہوتا تھا۔ خیر، وہ موقع جب آ گیا، چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے، اس موقع پہ ہم جو بھی کام کریں گے اس سے فائدہ ہوگا۔ خیر، یہ گئے ان کے بت خانے میں، سارے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا، ایک بہت بڑے بت کو نہ توڑا۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے، یہاں ہم سب کے لیے عملی تبلیغ کا بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ ہم ہوتے سب سے پہلے جا کے بڑے بت کو توڑتے، کیونکہ نعرہ بھی تو لگانا ہے نا جی، میں نے یہ کر دیا۔ نہیں، چھوٹے توڑے، بڑا رکھ دیا۔ اور کیوں کیا ایسا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ اس کے بھی کئی مختلف معنی ہیں، یعنی جب واپس آئیں تو اس کو دیکھیں، اس سے ہی پوچھ لیں کہ کیا ہوا تمہارے چھوٹوں کے ساتھ، تو اس سے ان کا ضمیر جاگے گا کہ اس بڑے کے سامنے چھوٹوں کی درگت بن گئی، یہ کچھ نہ کر سکے، تو شاید عقل آ جائے، ہوش آ جائے کہ یہ تو پرستش کے قابل ہی نہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع کر لیں۔ اور اسی طرح سے کئی اور مختلف معنی بھی ہوتے ہیں، جو بہرحال ہمارے عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ اب یہاں صرف اتنی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گئے، اور جب جانے لگے قوم نے کہا بھی ہمارے ساتھ چلتے ہو، کہنے لگے نہیں، انی سقیم، یہ لفظ آگے آئے گا انشاءاللہ، میں بیمار ہوں، پلٹ گئے، قوم چلی گئی، یہ اکیلے تھے، واپس گئے اور کام کرنا شروع کیا۔ سورۃ صافات کی آیت 93 اور اس سے آگے میں بہت تفصیل سے بتوں کو توڑنے کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ فراغ علیہم ضربًا بالیمین، کہ ابراہیم فارغ ہوئے اور انہوں نے پھر خوب زور زور کی ضربیں لگائیں اور بتوں کو توڑ دیا۔ یہاں صرف ایک مختصر سی بات ہے، اس لیے ہم بھی اس کو مختصراً لیں گے۔ اب کیا ہوا، بت کو توڑا، واپس آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ قوم حسب رواج اپنے میلے سے سیدھی مندر گئی، وہاں جا کے دیکھا سارے خدا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قالو، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ جس نے بھی کیا ہے، انہ لمن الظالمین، وہ تو بڑا ہی ظالم ہے، یعنی اس نے ظلم کر دیا، ہمارے خداؤں کو توڑ گیا۔ من، جس نے یا کس نے، دونوں ہی معنوں میں آتا ہے۔ اب یہ چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ آپ سوچیں نا، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ایک دم ریئیکشن شروع ہوتا ہے، مثلاً کوئی گیا ہو کہیں اور پیچھے سے چوری ہو جائے، جب گھر واپس آئے چیزیں بکھری ہوئی خراب ہے، تو لوگ عموماً کہتے ہیں نا، اچھا یہ مالی نے کیا ہوگا، نہیں یہ ڈرائیور کا کام ہے، نہیں یہ پچھلے گھر سے کوئی کودا ہوگا۔ اسی طرح جتنے منہ اتنی باتیں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے دیکھا دیکھی بولا، قالو، سمینا فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر، یعنی بتوں کا ذکر، برائی سے کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ دیکھے ابراہیم پوری قوم کے اندر ایک اکیلے تھے توحید پر، یہ اعزاز بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں فتنے بھی بڑے آتے ہیں۔ ہم یہ تو بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہم کسی بھی پرورٹیڈ سوسائٹی کے اندر بارش کا پہلا قطرہ بنے، جو اس کی گندگی آلودگی کو ختم کر کے صاف کر دے۔ یقیناً یہ بہت بڑا آنر ہے، اللہ جس کو نصیب کر دے اور اس کو قائم بھی رکھے۔ لیکن یاد رکھیے، ایسے بندے پہ چھینٹے بہت اڑتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ لوگوں کی برائیوں پہ تنقید کریں گے نا، تو آوازیں اٹھیں گی۔ امیجینیشن میں لائیے، ایک تالاب ہے، اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا پتھر مارتے ہیں، کیا ہوگا؟ پتھر کے ڈلتے ہی آواز آئے گی نا، اور لہریں بھی اٹھیں گی، تھوڑا سا شور بھی اٹھے گا۔ آپ اسی تالاب کے اندر ایک ذرا درمیانے سائز کا پتھر ماریں تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی لہریں اٹھیں گی، اضطراب ہوگا۔ لیکن آپ وہاں ایک اینٹ ماریں تو میرا خیال ہے کہ اتنی زور سے پانی اچھلے گا کہ آپ کے اوپر بھی چھینٹے پڑیں گی۔ आप किसी सोसाइटी में काम करने के लिए जाएं ना, पहले उसको ऑब्जर्व करें, इर्द गिर्द लोग कौन से हैं, लोग किस दीन पर हैं, उनके रस्म और रिवाज, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके मुताबिक काम करें। ये बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आपको अल्लाह ताला बहुत जगह मौके दे, कहीं जाके सर धाड़ मुंह फाड़ तबलीग ना करने लगें। चाहे आप अपने ससुराल में पहुंच गए मैके से, आप एक मुल्क से दूसरे में, एक शहर से दूसरे, पहले समझें माहौल को, समझें इन बेचारों की मजबूरी क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत अंदाज़ इख्तियार किया, संजीदगी का एहसास दिलाया कि मैं लाएबीन में से नहीं हूँ, तुम जो भी करोगे मैं जो बात करूँगा उसको पूरे दलील से करूँगा और उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होगा। लिहाजा जब भी कभी आप हक की बात करें तो तैयार रहें कि आपके खिलाफ बातें भी होंगी, लेकिन जब आप पहले से तैयार होंगे ना कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो छोटी भी होंगी ना तो आप परवाह नहीं होगी। हम जब ये सोच के आते हैं ना कि हाय बस मैं तो चली हूँ अल्लाह की बात पहुँचाने, लोगों ने फूलों के हार पकड़ के मेरे आगे खड़े हो जाना है, तो फिर हमें लोगों का एक जुमला भी चुभाता है, नहीं चुभने की ज़रूरत। आप सोचे बहुत कुछ होगा, लोग मुझे मार ही देंगे, तो फिर आपको बाद में हैरत क्योंकि अभी तक मारा क्यों नहीं मुझे, बातों को क्या करना है। यहाँ बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो लोगों की बातें हैं, आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि इब्राहिम की शोहरत हो चुकी थी, मारूफ थे कि ये शख्स जो है ये बच्चा है, और फ़तन का लफ्ज़ बोला, पीछे आप सूरत अलकाहफ में पढ़ चुके, फ़तन यंग को कहते हैं, टीनेजर कह लें या अर्ली ट्वेंटीज़ का शख्स कह लें, यानी बिल्कुल कल का बच्चा हो के आज हमारे आगे ऐसी बातें करता है। कालू, कहने लगे, फातु बिही, पकड़ कर लाओ इसको, अला आयुनिन नास, लोगों के रूबरू, ताकि लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो इसके बारे में कोई गवाही दें, कोई शहादत दें। कहा पकड़ के लाओ, अब पेशी हो गई, जाओ पुलिस को कहो कि उसको पकड़ कर लाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया, वो घर में बैठे हैं, ये मंदिर में बैठे हैं, बुत टूटा हुआ बड़ा बुत सामने खड़ा है, और इनको फिक्र क्या लग गई कि इब्राहिम ने ही ये किया होगा, इनको लेकर आए। ये जो लफ्ज़ है ना आयुनी, ये आइनुन की जमा है, आइन कहते हैं आँखों, जिसको आज हमारे यहाँ कहते हैं ना किसी की आँखों के सामने ले आना, या बिल्कुल पेशी के मानों में यहाँ लफ्ज़ है। लअल्लहुम यशहदून, शायद के वो गवाही दे दें। खैर, आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई शर्म नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि अपने आप को जहनी तौर पे तैयार करते हुए आए। पहले कौम ने पूछा, अंत फ़अलता हाज़ा, क्या तुमने किया है ये, इशारा था बुतों को तोड़ने का, भी आलिहतिना या इब्राहिम, हमारे इलाहों के साथ ए इब्राहिम, यानी इब्राहिम क्या आपने हमारे इलाहों के साथ ये कुछ किया है। देखिए अंदाज से ज़रा गौर कीजिएगा, इब्राहिम ने खुद कोई भड़क नहीं मारी, उसको बढ़ के मारना कहते हैं ना, हाँ, जैसे वो गंडा सा हाथ में पकड़ के, और वो क्या कपड़े को बोलते हैं जो पीछे बांध के लोग पहलवानों की तरह आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पटका, पटका सा होता है, और कहते हैं हाँ जी कर लिए, अब यहाँ ये नहीं हो सकता। इब्राहिम खामोश है, काम कर लिया, अब खामोशी, ये एक बहुत प्यारा अंदाज़ होता है। कभी भी आप किसी की किसी रस्म, किसी के कुछ किसी अकीदे पे चोट लगाए ना, तो बाय फेस अपने आप को मुतमईन और स्माइली रखें, क्योंकि एक तो चोट उसके दिल पे पड़ चुकी है उस काम से, ऊपर से अगर आप भी बोलने लगे, गरजने लगे, घन गरज, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं आज के बाद ऐसे नहीं चलने दूंगी, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उससे खराबी दुगनी हो जाती है। खामोश रहे, फिर कौम को आखिर पूछना पड़ा, तुमने किया ये हमारे इलाहों के साथ। अब आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़रा जवाब गौर से सुनिएगा, काला बल फ़अलहू, नहीं नहीं का, नोट कीजिएगा लफ्ज़, यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, इसलिए मैं आपको कॉन्शियस कर रही हूँ। काला बल फ़अलहू कबीरुहुम, बल्कि इनके इस बड़े ने ये हरकत की होगी, हाजा इसने, फस अलूहुम इन कानु यन्तिकून, बस पूछ लो इनसे अगर ये गुफ्तगू करने की सकत रखते हैं। इस लफ्ज़ में बज़ाहर झूठ लगता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बल्कि किया है बड़े ने, ये उन सवालों में से जिस पे क़यामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने लोगों के लिए सिफारिश करने के लिए जाने से डरेंगे, कहेंगे मैंने तीन झूठ बोल लिए थे, मुझे डर लग रहा है कि आज अल्लाह ताला मुझे उनमें से ना पूछ ले। बास ने यहाँ जो बात है बल फालहू, इसको एक झूठ करार दिया है कैसे लग रहा है कि इब्राहिम ने ये कहा है कि इस बड़े बुत ने किया। हालांकि अगर आप गौर करें, पहली बात है कि हज़रत इब्राहिम के इस जुमले से ये नहीं मिलता कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, ये तौरिया का अंदाज़ होता है। ये कहना कि फ़लाँ ने किया है, ये कहना, और ये कहना कि मैंने नहीं किया, दोनों में फ़र्क है। मिसाल छोटी सी आपको दे देती हूँ कि यहाँ से एक ग्लास टूट गया। अब ग्लास तोड़ा है किसी ने, तो कोई आता है और पूछता है कि तुमने ये ग्लास तोड़ा है, मिसाल दे ले आप, या किसने तोड़ा है। एक जुमला कि आप कहे कि मैंने नहीं तोड़ा, ये तो सरासर झूठ हो गया। और आप इसकी जगह कह दें अल्लाह के एक बंदे ने तोड़ा, बात समझ रहे ना। अब आपने क्या बोला, अल्लाह का एक बंदा वो खुद भी तोड़ सकता है ना, इसको तौरिया कहते हैं। और सूरह आराफ़ में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदाज में तमस्खुर भी था, तंस भी थी, मजाह भी था और तौरिया भी था। बस कहते फालहू में ज़मीर उन्होंने बुत की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ की है, क्योंकि दुनिया में जो काम होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। और सारी बात खुल के कह दी, कोई बात नहीं, फसलूहुम इन कानू यंतकून, इनसे ही पूछ लो अगर ये बोलते हैं। बस कहते हैं कि उन्होंने उस एक बुत को इसलिए रखा कि इससे पूछें बाकियों के साथ क्या हुआ। लेकिन आप ज़रा यहाँ गौर करें, जमा की ज़मीर है फसलूहुम, ये नहीं कहा कि फसलूहू उसे एक बड़े से पूछो, बल्कि उन टूटे हुए बुतों की तरफ इशारा करके कहा इन सबसे ही पूछो कि तुम्हें किसने मारा है भाई। अब ये वो बात थी जो वाकई शऊर को बेदार करने वाली है। फरजउ अला अनफुसिहिम, पस लाजवाब होकर अपने दिलों की तरफ पलटे, गौर व फिक्र करने लगे, अपनी अकल की तरफ लौटे, फितरत की तरफ लौटे। ये है वो अंदाज़ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग के नतीजे में इस कौम ने इख्तियार किया। आज भी हम में से हर एक को तबलीग में यही स्टाइल इख्तियार करना चाहिए कि लोग हमारे दलाइल से मुतासिर होकर रजऊ अला अनफुसिहिम, हमारे यहाँ कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांकने लगे। हर बंदे के अंदर फितरतन तौहीद रस्टी बसी है, हम 20 बार ये जुमला बोल चुके पिछले पारों में। इनको भी पता था कि हम एक खुदा को छोड़कर इन झूठे माबूदों के पीछे लगे हुए हैं। इब्राहिम ने इतने खूबसूरत तरीके से तबलीग की कि वाकई लाजवाब हो गए। आप कह सकते हैं कि इब्राहिम ने उनकी अना को झंझोड़ने की बजाय उनके ज़मीर को झंझोड़ा। फ़कालु इन्नकुम अन्तुमुज़्ज़ालिमून, कहने लगे तुम ही ज़ियाकार हो। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, फिर रूंधे होकर अपनी साबका गुमराही की तरफ पलट आए। ये बड़ी तकलीफ़ दह कहानी होती है। बहुत सारे लोगों को हक पता चल जाता है, अल्लाह के नबी हक पे थे, बहुत सारे लोगों को पता चला फिर भी नहीं माने। मदीना के कई यहूद को पता चल चुका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो नबी हैं जिनकी खबर हमारी किताबों में थी, लेकिन सुम्मा नुकिसु अला रुसिहिम वाली कैफियत कब आती है, जब बंदा मान के ना दे। आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि मर्द नादां पे कलाम दिल फरेब बे असर, हीरे की पत्ती से कट सकता है, नहीं फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अल्लाह ताला फूल की पत्ती से हीरा कटवाता है, लेकिन जो नादान शख्स होता है ना, अक्खड़ उजड़, उसको नहीं समझ आती। आप उस पर इतने नरम व नाजुक कलाम की बातें करें, प्यार से समझाएं, नहीं मानना तो नहीं मानना। इस कौम का हाल क्या था कि ये भी नुकिसु हो गए। ये क्या होता है, नून काफ सीन, निकसुन कहते हैं पाँव ऊपर करके सर नीचे रखना। हमारे यहाँ बच्चों को ये सज़ा भी देते हैं ना, ओंधा होना मानी मानी क्या है कि फिर वो उल्टा दिए गए अपने सरों के बल। अपने लफ्ज़ों में आप कह लें कि मत मारी गई उनकी, अकल इनकी टखनों में चली गई, अकल से पैदल हो गए। मफहूम क्या है, लाजवाब होकर फिर कुफर की तरफ लौट गए। अल्लाह ने हिदायत की एक चकाचौंध उनकी ज़िंदगी में की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ज़ाया कर दिया। हकीकत यह कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इस किस्म की चकाचौंध होती है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़वाद हासिल करने के लिए या बाप दादा या कुछ नस्बतों को सच्चा करने के लिए लोग हक़ को नहीं मानते। लक़द अलिम तमाहा उलायंतकून, दबी सी आवाज़ से बस यही बोले, तुम तो खूब जानते हो कि ये तो बोलते ही नहीं है, शर्मिंदगी के साथ बोले ना, कैसे ये होगा, ये तो बोल ही नहीं सकते, ये किस तरह होंगे। ये देखिए कि वो पॉइंट है कि जिस पे हम थोड़ी सी अगर बात करें तो हमें भी इंशाल्लाह ताला अपने इर्द गिर्द फैली हुई बुराइयों को टैकल करने की इंशाल्लाह हिकमत समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये करने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अमली एक्शन ले चुके थे, उनके दिलों को ये बात समझ आ चुकी थी कि हमारे बुत बेबस हैं। इसके बावजूद वो नहीं माने, ना तोड़ते तो क्या नुकसान होता। क्या फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए कि देखो बुत तक तोड़ दिए लोग फिर भी ना माने। देखिए मैं आपको इस बात को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। एक लकड़ी है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। अब वो लकड़ी तोड़ने की कई मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है ना, आप एकदम उसको पूरी तोड़ना चाहें, नहीं तोड़ते, आप क्या करते हैं, उसमें कट लगा देते हैं, थोड़ी सी कच्ची हो गई ना, छोड़ दें, फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद वहीं एक और कट लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी टूट जाएगी ना। उनके अंदर एक कट लग चुका था, यानी बुतों को तोड़ना, लेकिन इसके बावजूद उनका इस्लाम कबूल ना करना इब्राहिम की नाकामी नहीं थी। ये चोटें लगती रहती हैं ना, तो दुखे हुए को दुखाएं तो ज़्यादा जल्दी इंसान बात को समझता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल बिल्कुल दुरुस्त था, उन्होंने उनके अंदर अपने माबूदों की बेबसी को उजागर कर दिया। और बंदा अंदर से मान जाए ना, बाहर ना माने तो कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती कि बाहर से भी मानने लगेगा। कितने लोग जो कन्वर्ट होकर इस्लाम की तरफ आते हैं ना, वो कई मौके पे पहले अंदर से टूट चुके होते हैं फिर जुड़ते हैं। इसलिए इसमें एक अमल का नुक्ता लिख लें कि बहुत मज़बूत लकड़ियों को अगर आप एकदम तोड़ना चाहें ना, आप कहें कि मेरे आज के दर्द से ये बंदा 5 वक्त नमाजी हो जाए, या इसकी दाढ़ी उग जाए, या ये सूद छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं होता, आप भी थकेंगे। ऐसे मुनासिब मौके पे, जिसको कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, लोहा नरम देखो, फिर उस पर बात करो, छोटी छोटी बातें कर कर के आप देखेंगे कि एक वक्त आता है कि बंदा फिर उस चीज़ को छोड़ देता है। बच्चों को ही देख ले, उनका भी यही मामला होता है। आखिर उनको बात आपकी कब समझ आती है, जब वो खुद बाप बनते हैं, 25-30 साल से ऊपर उम्र होती है, फिर उनको आपकी सारी याद आती हैं। जैसे आपको भी अपने नाना दादा की, अपने उस्तादों की याद आती होंगी ना, तो बात जाती कहीं नहीं है, फ़ायदा होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुतों का तذکرہ करने की बात जब उन्होंने की तो क्या कहा, यज़कुरु, जिक्र करता है वो हमारे माबूदों का। यहाँ उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो बड़ा बुरा कहता है हमारे बुतों को, एहतियातन कह रहे हैं, यानी एहतियात से बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इब्राहीम हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, कि कहीं इब्राहीम का ये बोल बोलने से हमारे ऊपर भी कोई वबाल ना पड़ जाए। मसलन जो लोग बुतों के, पीरों के या कब्रों के मुजावर होते हैं ना, तो वो ये थोड़ी कहते हैं कि फौत हो गए हैं, वो कहते हैं ये पर्दा फरमा गए हैं, वो ये नहीं कहते कि ये फौत हो गए हैं, वो सोचते हैं कि फौत होने का लफ्ज़ कहना शायद इनकी बुराई है या इनकी तौहीन है। अच्छा, उस दौर में तो ये सारे बुत थे जिनको तोड़ने की ज़रूरत थी। आज भी कुछ है ऐसा तरीका, आप जाएँ किसी मुशरिक मुल्क में और उनकी दरगाहों को जाके छेड़ना शुरू कर दें, ये इससे मफहूम तो नहीं किसी ने ले लिया, उनको छोड़ दें। आज हमारे अपने मुल्कों में आर्ट और कल्चर के नाम पे बेशुमार बुत हैं, मुजस्मा साजी हमारे कॉलेजेस में सिखाई जाती है, आर्ट और फन और इकोनॉमिक्स के नाम पे महंगे तरीन कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के जहाँ मुजस्मा साजी सिखाई जाती है, वहाँ मुसव्वरी सिखाई जाती है, और जब कोई बात करता है तो लोग उसके ऊपर भी बातें करते हैं। तो क्या फिर इस्लाम आर्ट का या फ़न का या कल्चर का दुश्मन है? दुश्मन नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि हमारी हर चीज़ के ऊपर जो छाप लगी हो ना, वो इस्लाम की लगी हो। जहाँ कोई चीज़ अपनी हदों से पार होने लगती है ना, वहाँ आप समझ लें कि वो चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं होती। आज भी तो हमारे यहाँ ये हो रहा है ना, हर जगह एक औरत को नाचता हुआ दिखाते हैं। आप सिंध वैली के अगर बुतों को देखें तो उसके अंदर से भी उन्होंने जो डांसिंग डॉल निकाली है, उसी को सिंबल बना दिया अपने असारे कदीमा का, कहीं बुल निकाल दिया। तो ऐसे जो कल्चर होते हैं जहाँ इस किस्म की परवर्शन होती है, वहाँ इंसान को अच्छे तरीके से पैगाम पहुँचाने के लिए बात करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ तक जिस खूबसूरत तरीके से पैगाम पहुँच सके पहुँचाया जाए। इब्राहिम अकेले थे, कोई टीम नहीं थी उनके साथ, लेकिन जो कर सकते थे कर दिया, पैगाम दिया। इससे पता चलता है कि अच्छी प्लानिंग की वजह से थोड़े से लोग भी ज़्यादा लोगों से ज़्यादा काम कर सकते हैं, और बेहंगम तरीके से काम करने की वजह से बड़े बड़े गिरोह जो हैं वो चूचू का मरब्बा बने रहते हैं, काम कुछ होता नहीं। इतने वज़ीर हो जाते हैं कि कोई वज़ीर ही नहीं बचता कि क्या वज़ारत का नाम दें, लेकिन काम कुछ होने का नहीं होता। तो ख़ुद को इस तरीके से माइल करना चाहिए कि जिसके साथ इंसान अपने आप को रखे। कहने लगे, قال أفتعبدون من دون الله, आपने फरमाया, नादानों, क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर इन बेबस बुतों की? मा ला यनफाउकुम शैय वला यदुर्रुकुम, जो ना तुमको फ़ायदा पहुंचा सके ना तुमको ज़रर दे सके। शोर को बेदार किया ना कि देखो, माबूद तो वो है जो नफ़े नुकसान का मालिक हो, ये तो दोनों ही नहीं है। उफ़िल लकुम, उफ़ है तुम पर। उफ़ पीछे भी हम पढ़ चुके, वो आवाज़ या कलमा जो किसी चीज़ से कराहियत को ज़ाहिर करे। माँ बाप के साथ बात करने में ये बात पीछे हम पढ़ चुके का तुम पे उफ़ है। वलीमा ताबुदूना, और उन पर भी जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, अफला ताकिलून, क्या बस तुम अक़ल नहीं रखते? क्या तुम अक़ल से आरी हो चुके हो? यहाँ देखिए कि उन्होंने अब एक और चोट कसने की कोशिश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको हर हुज्जत देने के बाद अब दोबारा उनकी अक़ल को झंझोड़ा कि छोड़ दो बाकी चीज़ों को, दीन को एक तरफ कर दो, अक़ल से पूछो कि जिन बुतों के आगे तुम बैठे हो क्या वो तुम्हारे कुछ काम करने वाले हैं? और आप देखिए कि दलील की कुव्वत, अक़ल की कुव्वत हर कुव्वत से बड़ी होती है। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दलील की कुव्वत थी ना, तो उनको हथियारों की ज़रूरत नहीं थी, उनको आर्मी की ज़रूरत नहीं थी। इसके बरक्स कौम जो बहुत बड़ी नफरी भी थी, दुनियावी तौर पे भी बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन उनके पास दलील नहीं थी, अक़ल भी कम थी, तभी तो शिर्क करते थे। लिहाजा गुस्से में आ गए, तशद्दुद बरतने लगे और कहने लगे, कालू हर्रिकूहू, जला दो इसको। सब यक जुबान होकर लगता है बोले, वन सुरु आलिहतकुम, और मदद करो अपने इलाहों की। देखिए कितना मज़ह का खेज जुमला है। इलाह कौन होता है जो दूसरों की मदद करे, और ये किसको इलाह बना रहे? क्या कहते हैं, अपने इलाहों की मदद करो। इन कुन तुम फ़ाइलीन, अगर तुम हो कुछ करने वाले। अब ये तो उनका जुमला था ना कि पकड़ो मारो जलाओ, ये है वो एग्रेशन, ये है वो एक किस्म का रिएक्शन जो उनके अंदर पैदा हुआ कि अब दलील से तो बात नहीं कर सकते। आज भी बड़ी बड़ी कुव्वतें, बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो हैं, जब देखते हैं कि किसी मुसलमान के पास हक है ना, तो उसके जवाब में तशद्दुद बरतना चाहते हैं। वो हज़रत इब्राहिम को जलाना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसी इबरतनाक सज़ा देना चाहते थे कि कोई हिम्मत ना करे इसके बाद ऐसी बात करने की। ऐसे वक्त में उन्होंने धमकियाँ दी। कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो गरजते हैं सो बरसते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि जब इंसान अकल नहीं इस्तेमाल करता ना, तो धमकियां देने लगता है। बस माएँ अपने बच्चों को धमकियां दे रही होती हैं, तशद्दुद करती हैं उन पे, छोटे बच्चों को मारती देखी गई माएँ। दूध पीता बच्चा दूध नहीं पीता, माँ उसको थप्पड़ मार रही है। ये आपकी कमज़ोरी की अलामत है, आपने हार मान ली है। खुद तो गुस्से में जल रहे थे, इब्राहिम को भी जलाने की कोशिश की। सूरत अनकबूत आयत 24 और सूरत सुआफ़ात आयत 97 में भी यही बात है कि फ़मा कान जवाब कौमी ही इल्ला कालुक़्तुलू हो औ हर्रिकू हो। कौम का जवाब ही नहीं था इसके सिवा कुछ और कि इसको जला दो या इसको कत्ल कर दो। अब वो तो कुछ और कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कुछ और चाहा, और वो क्या था? खुलना, हमने कहा। किसने? अल्लाह ताला ने कहा। किसको कहा? फरिश्तों को कहा। क्या कहा? या नारुकूनी बर्दं वसलामन, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, अला इब्राहीम, इब्राहीम पर। ये एक जुमला उनकी सारी कोशिशों और सारी धमकियों को ठंडा कर गया। इस जुमले की वजह से उस वक़्त दुनिया की सारी आग ठंडी हो गई। ये है अल्लाह की ताकत। जब बंदा ख़ुद कमज़ोर होता है ना, तो अल्लाह की ज़ात उसकी ताकत बन जाती है, और अल्लाह ताला ने इब्राहीम के लिए आग ठंडी की। देखिए उस वक़्त इब्राहिम को पता था कि आग ठंडी हो जाएगी। एक साइड का पॉइंट बहुत ही अमल वाला है, उसको देख लेते हैं कि इब्राहिम जब आग में कूदे उसके बाद आग ठंडी हुई ना। रिवायात में आता है कि उन्होंने आग जलाई, उसमें मन्नतें मानते, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बच्चा पैदा हुआ तो आग डालेंगे। यानी अपनी नज़र में वो बड़ा नेकी का काम कर रहे थे, आग में हिस्सा डालने का। उनकी औरतें लकड़ियों के गट्ठल ला ला के रखती थी, मन्नत के वो होते थे कि हम इब्राहिम की आग में हिस्सा डालेंगे। क्या वो इसको गुनाह का काम समझ के कर रहे थे? इसी तरह आज भी जो शिर्क करने वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े बड़े मुशरिकाना काम ऐन इबादत समझ के करते हैं। अब उसमें डाला कैसे जाए? इतनी बड़ी आग है जिसके अंदर को जाएगा वो भी जलेगा। उस वक्त मंजबी की जात हुई, जैसे गुलेल होती है ना, उसी तरह एक छोटा सा पंखुड़ा सा टाइप होती चीज़, उसमें इब्राहिम को रख के तो पीछे से ज़ोर से किसी चीज़ से उसको धक्का दिया कि वो उछल के उस आग में गए। अल्लाह ताला ने इससे पहले क्यों नहीं रोक लिया? आग में गए और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि या नारु कूनी, ए आग, कूनी क्यों आया है? क्योंकि आग नार मुअन्नस होती है, कूनी या जो है मुअन्नस की, इधर हो जा, कुन ये वही लफ्ज़ है जो कुन है। बर्दन ठंडी उर्दू में भी बोलते हैं, बर्फ़ को भी कहते हैं, और सलामन सलामती वाली, कितनी ठंडी हो कि सलामत हो। अगर अल्लाह सुबहान तआला बर्दन के आगे सलामन का लफ्ज़ ना डालते तो कहते हैं कि आग इतनी ठंडी हो जाती कि ठंड की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ हो जाती। और आप लोग तो जानते हैं कि जिस तरह गर्मी चुभती है, इस तरह सर्दी भी चुभती है। जब -20 में जाता है तो आपके अपने जिस्म पे सुइयां सुइयां चुभने लगती हैं। तो अल्लाह की ज़ात देखिए कि आग जिसका काम क्या है, जलाना, उसको कर दिया ठंडा। इसको कहते हैं मोजज़ा। मोजज़ा क्या होता है? जिसको समझने से अक़ल आजिज़ आ जाए। आग जलाती है लेकिन जलाए ना ठंडी हो जाए, ये मोजज़ा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया कराम के लिए होता है। और ये कब होता है? जितना इखलास ज़्यादा होता है। यहाँ आप देखिए, कई लोगों ने बाद में ऐसी कोशिशें की कि अच्छा इब्राहिम की आग ठंडी हो गई थी, हम भी आग में कूदते हैं, जल के राख हो गए। इब्राहिम को अल्लाह ने मौका दिया, इब्राहिम उसमें गए, फिर आग जली, फिर ठंडी हुई। और रिवायात में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाते हुए जो कलमा पढ़ा वो क्या था? हसबुनल्लाहु व नियमल वकील। इसी कलमे को अल्लाह के नबी ने भी पढ़ा और सहाबा कराम ने पढ़ा। ये सही बुखारी की रिवायत है इब्ने अब्बास से। सूरह आल इमरान आयत 173 में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हसबुनल्लाहु व नियमल वकील। ऐसे वक्त में फिर बंदा जब अल्लाह को बड़ा बना लेता है ना, तो वाकई फिर अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है। मैं सोच रही थी इन आयतों की तैयारी करते हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले ख़ुद आग में गए फिर बचे, अल्लाह की इस कुदरत को देख चुके थे। इसके बाद दोबारा उनकी आजमाइश हुई थी ना, बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने वाली। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना कब आसान हुई? जब पहले ख़ुद अल्लाह के हुक्म पे आग में जा चुके थे। हम जब तक ख़ुद अपने ऊपर दीन नहीं लेके आते ना, हम अपनी औलाद पे भी नहीं ला सकते थे। ये तो आज हम कहते हैं ना, आग ठंडी हो गई, वो हो गई, कोई गारंटी तो नहीं मांगी थी। आज हम जब नेकी करने लगते हैं ना, तो पहले गारंटी मांगते हैं, नहीं अल्लाह पहले दिखा कि क्या होगा, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, मैं जल तो नहीं जाऊंगी, मैं हराम छोड़ूंगी, लेकिन बता इसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार बन जाएगा ना। अल्लाह ताला ये रिश्ता मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि ये इस्लामिकली ठीक नहीं था, तू मुझे पहले दिखा कि इसके बदले में मेरे बच्ची का कैसा रिश्ता आएगा। नहीं, इफ्स एंड बट्स नहीं चलते अल्लाह के पास। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूत में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे जुए बाम अभी। और अक्ल ने कितनी अयारियाँ की होंगी, कितनी बातें सुझाई होंगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कितने मशवरे दिए होंगे कि इब्राहिम होश करो, अभी जवान हो, अभी तो तुमने देखा ही क्या है, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अक़ल इतनी अय्यार होती है, जब बंदा कोई नेकी करने लगता है ना, सबसे पहले अक़ल आ जाती है सामने मशवरे देने के लिए, आप ये ना करो, वो ना करो। आज भी जब हम कोई नेकी करना चाहते हैं ना, तो हमारे सामने जो रुकावट बनती है वो हमारी अक़ल ही बनती है। ऐसे मौक़ों पे फिर अक़ल को धुतकारे और अल्लाह से फ़हम और रुश्त मांग के वो काम कर दो। आज कोई नेकी करनी हम कहते नहीं, अभी नहीं, हालात संवार लें, अभी नहीं, ज़रा अभी तो मियाँ का मूड ठीक नहीं, देखना अभी इसके बाद मियाँ को पढ़ाऊँगी, मियाँ पढ़ जाएंगे फिर खुद देखना मेरे लिए अबाया और स्काफ लेके आएंगे फिर पहनूंगी। ना बुलाएंगे ना आप पहनेंगे। ये अक्ल की जो तावीलात होती है ना, ये हमें कहीं का नहीं रखती। अभी सर्दी बहुत है, ज़रा गर्मी आ ले फिर देखना मैंने ये काम करना शुरू कर देना। अल्लाह ही करवाएगा तो फिर करेगा बंदा काम। नमाज शुरू कर दी है, ज़रा सर्दियाँ चली जाएँ, गर्मी आ जाए, पानी गर्म हो जाए, फिर पढ़ोगे। पर्दा करना है, ज़रा बस गर्मियाँ चली जाएँ, सांस बड़ा घुटता है, सर्दी में करेंगे। ये अकल के मशवरे होते हैं, इनको आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना होता है, फिर चल पड़ेगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, कहते हैं कि आग तो जलाती है ना, किस चीज़ को? जिसका दर्जा हरारत आग से कम हो। मसलन आप आग में ये कागज़ डाल देंगे तो कागज़ ठंडा है, जल जाएगा। इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? क्योंकि इब्राहिम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की जो आग जल रही थी ना, उसका टेम्परेचर बाहर की आग से ज़्यादा था, इसलिए नहीं जला सके। हम अपने आप को देख लें, हम तो इतने ठंडे हैं अल्लाह के मामले में, ठंड में तो और ही ठंडे हो जाते हैं। हमें अल्लाह ना करे कोई मौका आ जाए तो हमें तो आग वाकई जला जाएगी, क्योंकि हम ठंडे हैं। अपने अंदर ईमान की मोहब्बत लाएं, इस्लाम की मोहब्बत लाएं, कहें कि अल्लाह तेरे रास्ते में कोई आग भी लगी तो खुशी से कूद पड़ेंगे। लेकिन जब अकल पाँव की बेड़ियाँ बन जाती हैं तो सिराते मुस्तकीम पर बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। इसको कभी कभी तनख्वाह छोड़ना चाहिए, कर दीजिए। आज तो हमें आग जला देती है, आखरत की आग बहुत बड़ी है, उसको देखना पड़े। अब देखिए, जो घरों में मरते हैं, बिस्तरों पे मरते हैं, क्या वो तकलीफ़ के बग़ैर मरते हैं? नहीं, उनको भी तकलीफ़ आती है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह के रास्ते की आग हो। बाज़ रिवायात में आते कि 7 दिन तक, 7 डेज़ तक आग में पड़े रहे, और फरमाया करते थे कि मुझे सारी ज़िंदगी में इतनी राहत नहीं मिली जितनी मुझे इन 7 दिनों में मिली। क्यों? कि जो आग अल्लाह के रास्ते में जलती है वो ठंडी होती है। वरादु बिही कैदन फजालना हुमुल अखसरीन, और उन्होंने तो इब्राहिम के लिए तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा किया, हमने उन्हीं को नाकाम कर दिया। ये सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं था, क़यामत तक हर बंदे के लिए अल्लाह का यही असूल है कि जो अल्लाह के रास्ते में चल पड़ेगा इखलास के साथ, दर्द के साथ, अल्लाह की मोहब्बत की ग़िज़ा लेते हुए, अल्लाह उसको ज़रूर बचाएगा। वो मुसलमान हुए कि नहीं हुए? इब्राहिम बच गए। इब्राहिम के आग में से बच के निकलने का मंज़र देख के कोई मुसलमान हुआ कि नवा? कभी इसका तस्करा नहीं सुना। जैसे मूसा और जादूगरों के वाक़े के बाद बनी इसराइल के बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए थे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के मंज़र की कोई रिवायतें नहीं मिलती। मुझे तो नहीं मिली, कोई होगी तो यकीनन होगी, लेकिन इब्राहिम बच गए। किस बात की दलील है? कि आपकी कोशिशों से 100 को फ़ायदा हो, 10 को फ़ायदा हो, या 1 को भी ना हो, आप बच जाएंगे उस कोशिश के करने से। वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, और हमने निजात दी आपको और लूत को उस सरजमीन की तरफ जिधर हिजरत का हुक्म दिया गया, और जिसे हमने बाबरकत बनाया तमाम जहान वालों के लिए। ये वक्त था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की मुल्क शाम की तरफ, अल्लाह ने कहा निकल जाओ इन लोगों से, ये नकदरे लोग हैं, इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम इनको जहन्नुम की आग से बचाना चाहते हो, ये तुम्हें दुनिया की आग में डाल रहे हैं, छोड़ दो इनको, हो गई हुज्जत पूरी, ये इस काबिल ही नहीं है कि तुमको यहाँ रखे। जहाँ रहते थे वहाँ नमरूद का गलबा था, इराक़ की ज़मीन थी, निजात देकर अल्लाह ने मुल्क शाम में निकाल दिया। अल्लाह की ज़मीन वसी है, कैसे गैर मुस्लिम मुल्क से निकाल कर अल्लाह ने इब्राहिम को एक इतने प्यारे मुसलमान मुल्क में जगह दे दी, ये अल्लाह के काम है। जब कोई नबियों की कदर नहीं करता, अल्लाह नबियों को वहाँ रहने ही नहीं देता, और इस तरीके से खूबसूरत जगह दी, और साथ ही साथ देखिए कि लूत अलैहिस्सलाम भी हेल्पर बना के दे दिए, आपके भतीजे थे लेकिन अल्लाह ने दे दिए। वहबना लहू इसहाक व याकूब नाफिला, और हमने अता फरमाए उनको इसहाक और याकूब, यानी बेटा और पोता, नाफिला ज़रूरत से ज़ायद, एक्स्ट्रा के मानों में, अच्छी चीज़ के लिए आता है, इसी से लफ्ज़ नफिल भी है। कुर्बानियों के बाद बेटे और पोते मिले, ये दुनिया में नक़्त अलामत होती है कबूलियत की। वकुल्लन जालना सालेहीन, और हमने सबको सालेह बना दिया, ये थी उनके लिए आंखों की ठंडक। अल्लाह ने बेटा भी दिया, पोता भी दिया। वजालना हुम अइम्मत यहदू नबी अमरीना, उससे बढ़ के ये कि वो लोगों के पेशवा बन गए। इब्राहिम को और क्या चाहिए था? नहीं मानते तो ना मानो, अल्लाह ने अपनी नस्ल से ऐसा प्यारा बेटा दे दिया जिसकी नस्ल से पूरी कौम चली, और बाद में लोगों को हिदायत दिखाने वाले हो गए। वह अवहैना इलैहिम, اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، کیا فعل الخیرات، کہ نیکیوں کے کام کیا کرو، تم کرو نیکیاں، کوئی کہنے سے نہیں کرتا تو نہ کرے، و اقام الصلاۃ اور نماز ادا کریں، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کیا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہ ملتا ہے قربانیوں سے، اللہ کے راستے کی آگ میں جا کے تو دیکھیے اللہ انعام دیتا ہے۔ امتحان میں ابراہیم کے اتنے اچھے نمبر آئے کہ اللہ نے انعام میں بیٹا، پھر پوتا، پھر صالحین میں ہوئے، پھر وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اور کیا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے کہ گمراہیوں پر سمجھوتے کر لینا کبھی خیر نہیں لاتا۔ کبھی اللہ سے سہولت والی زندگی نہ مانگیں کہ اللہ بس آسان آسان زندگی دے دے، سو پی کے، چائے پی کے، کھا پی کے زندگی گزار دیں۔ نہیں، یہ مانگیں کہ اللہ وہ زندگی دے جو ہمارے بعد اصل میں شروع ہو۔ وجل لسان صدق فی الآخرین، آگے ہم پڑھیں گے، حضرت ابراہیم یہ دعائیں کرتے ہوئے نکلے تھے کہ اللہ میرے بعد لوگ میرا ذکر خیر کریں، جس جگہ کو چھوڑوں اس طرح چھوڑوں کہ لوگ دعا دیتے ہوئے میرا ذکر کریں، نہ کہ مجھے بد دعائیں دیتے رہیں۔ اس وقت جب ہجرت ہوئی تو حضرت سارہ بنت حاران سے بھی پھر ان کی شادی ہوئی، آپ کے ساتھ ایمان لائے حضرت لوط اور سارہ، ہجرت کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جگہ کو آباد کیا بیت المقدس سے۔ دیکھیے پھول تو پھول ہے، جہاں بھی جائے گا مہکے گا، لوگوں کو پھول اچھا نہ لگے اس جگہ کی بدبختی ہے، وہ پھول کسی اور جگہ کو جا کے مہکائے گا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم بیت المقدس گئے اور بنی اسرائیل کی پھر سارے انبیاء کرام بیت المقدس سے اٹھے۔ پڑھ چکے ہم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے ان کو دیا، نیکیوں کا شوق دیا اللہ نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تڑپ دیکھی ان کے اندر۔ ابراہیم کے قصے تو کبھی پورے نہیں ہوتے، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورۃ بقرہ آیت 124 میں پڑھ چکے۔ سورۃ صافات 113 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی اولادوں میں کچھ محسن تھے اور کچھ نفس پہ ظلم بھی کرنے والے تھے، تو نیک اور بد سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا ہوتا ہے، اور انہی کے ناطے سے پھر آگے حضرت لوط کا قصہ آتا ہے، جن کا تذکرہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا۔ یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا